जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नितै गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की नितै गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्णा तो आज के प्रातकालीन भागवतम की चर्चा में सत्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 28। इसका नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि प्राप्ति और श्लोक संख्या है 31। श्लोक पहले गाएंगे। एकैकस्याभवतेषां राजन् अबुर्दम् अबुर्दम् भोक्षते यद्वंश धरैमहि मन्वन्तरं परम् एकैकस्याभवतेषां राजन्नबुर्दम् अबुर्दम् भोक्षते यत् वंशधरे मही मनुअन्तरं परम् एकैकस्याभवतेषां राजन्नबुर्दम् अबुर्दम् भोक्षते यत् वंशधरे मही मनुअन्तरं परम् माताजी शब्दार्थ एक एकस्य हर एक के अभवत हुए तेषाम उनके राजन हे राजा अर्बुदम एक करोड़ अर्बुदम एक करोड़ भोक्षते भोगेंगे। यात जिसका वंशधरे वंशजों द्वारा मही सारा संसार मनु अंतरम एक मनु के अंत तक परम तथा उसके पश्चात। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, हे राजा प्राचीन परिषद, मलय ध्वज राजा के पुत्र ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया और ये सब एक मनु के अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनवंतर अर्थात मनु की आयु 71 × 43,20,000 वर्ष है। एक मनु के बाद दूसरा मनु आता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का जीवन चक्र चलता रहता है। चूंकि एक मनु के बाद एक मनु की परंपरा चलती है, अतः श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय चलता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 4.1 में हुई है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहं वेयं विवस्वान मन वे प्राह मुनि रिक्ष्वा कवि ब्रवेत। प्रसन्नचित भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा विवस्वान को दी। विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दी। सूर्यदेव विवस्वान ने भगवद गीता एक मनु को प्रदान की और इस मनु ने अपने पुत्र को दी, जिससे फिर उसे अन्य मनु को प्रदान की। इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार कभी रुकता नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन नया है। जैसा कि भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत से पुष्टि होती है, यह अत्यंत प्राचीन आंदोलन है, क्योंकि यह एक मनु से दूसरे को हस्तांतरित होता रहा है। वैष्णव में कुछ व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति संप्रदाय तो आगे बढ़ते रहता है। हम देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने सुसंबंध रूप से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उपदेश कार्य प्रारंभ किया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के सारे शिष्य गुरु भाई है, और यद्यपि इनमें कुछ मत भिन्नताएं हैं और वे मिलकर एक साथ काम नहीं करते, किंतु इनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिगत क्षमता से कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, और विश्व भर में इसे प्रचार करने के लिए अनेक शिष्य उत्पन्न कर रहा है। जहां तक हमारी बात है, हमने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की है, और कई हजार यूरोपीय तथा अमेरिकी इस आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। यह आंदोलन दावाग्नि के समान फैल रहा है। नवदा भक्ति पर आश्रित श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय कभी रुकने वाला नहीं। यह किसी जाति पाति रंग तथा देश के भेदभाव के बिना आगे बढ़ता रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस श्लोक में भोक्षते शब्द महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसी प्रकार ये सारे भक्त भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए संसार भर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। संसार के लोग तथाकथित धार्मिक स्वामियों, योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक पद तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं बता पाता। सारे संसार में भक्ति का प्रचार करने वाले 4 संप्रदाय है। ये है रामानुज संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय। मध्व गौड़ीय संप्रदाय भगवान चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये सारे भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन का व्यापक प्रचार कर रहे हैं और निर्दोष जनता को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, जो छद्म अवतारों, स्वामियों, योगियों तथा बाबाओं से संतरस्त है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సరస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామినే గౌరద్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర్భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. तो आज के बहुत दिन से हम पूरंजन की जो ये पूरंजन की कथा है वो सुन रहे हैं, लेकिन हम प्रभुपाद के परपोट के ऊपर चर्चा करेंगे. प्रभुपाद ने परपोट में बताया है कि किस तरह से इस दुनिया में प्रचार रुकने वाला नहीं है. प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई नहीं रोक सकता, जाति पाति रंग देश भेदभाव कुछ भी प्रचार को नहीं रोक सकता है. एक बात बताइए प्रभुपाद ने, और दूसरा बताया है कि जब भक्त भक्ति करते हैं तो वो संरक्षण प्रदान करते हैं सामान्य जनता को. किस तरह से, तो प्रचार करके ही संरक्षण प्रदान करते हैं. तो भगवद्गीता में भगवान पांचवें अध्याय में बताते हैं कि ऋषि कौन है. 5.25 में लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कलमशः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रथा. तो भगवान बोल रहे हैं कि ऋषि है, यानी आजकल ऋषि तो है नहीं, जंगल भी नहीं है, आजकल साधु है और शहर में वो मठ बांध के बैठे हैं बड़े बड़े, और गांव में पहाड़ों पे जाके बैठे हैं और मंदिर में भी बैठे हैं. इस तरह से यह साधु है. तो साधु कौन है कि प्रभुपाद बताते हैं, भगवान बताते हैं और प्रभुपाद में भी तात्पर्य में बताया है. तो पहला साधु का लक्षण बताया है कि क्षीण कलमशः, अर्थात वो पाप नहीं करता है. सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए पाप क्या है. बाद में वो पाप करना है कि नहीं करना है वो बात की बात है. सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाप क्या है. तो इसको पता रहता है कि पाप क्या है, वो पाप नहीं करता है और दूसरों को ये पाप करने से रोकता है, प्रचार करता है. दूसरे के जीवन में वो पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है, वो उसे उस प्रेरणा से क्या करता है, निवृत्त करता है. दूसरा बताया है साधु का लक्षण छिन्न द्वैधा. छिन्न द्वैधा मतलब क्या है, उसके हृदय में कुछ द्वंद्व नहीं है. क्या द्वंद्व नहीं है, कृष्ण भगवान है करके. कृष्ण भगवान है क्या नहीं, इसके ऊपर कोई द्वंद्व नहीं है. अभी हम देखते हैं कितनी बार इस्कॉन में आने के बाद, दीक्षा होने के बाद भी डाउट रहता है लोगों को, कृष्ण भगवान है क्या. इसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको. अभी दिंडी में गए थे हम, तो वरवण गांव में थे हम. उधर सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया. ब्रेकफास्ट होने के बाद दो माताजी मेरे पास आ गई, और पूछने था कि प्रभु जी केला है क्या? मैं हमने देखा था अभी केला। मैंने बोला है, लेकिन मैंने तो ब्रेकफास्ट दिया आपको, केला क्यों चाहिए? आज उपवास है। मैंने पूछा कौन सा उपवास है? संकष्ट चतुर्थी आज। तो मैंने कहा आप सोलामाला करते हैं? हाँ करते हैं, सोलामाला करते हैं। तो आपको कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? चतुर्थी करने का जरूरत क्या? कृष्ण मारेंगे आपको पकड़ के। क्योंकि कृष्ण को ऐसा, क्योंकि गणपति जो देता है वो कृष्ण दे सकते हैं, क्यों जरूरत क्या है? तो उनको दिया केला मैंने बाद में। बाद में वापस आ गए दो चार दिन के बाद, वही माता जी वापस, उन्होंने केला ही मांगा था। तो उनको बोला अभी क्या है? वो बोले आज भी उपवास है, शनिवार है आज। तो इस तरह से सामान्य इस्कॉन में आने के बाद भी बहुत लोगों को डाउट रहता है कि कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म सिद्ध होए। डाउट रहता है कि कृष्ण की भक्ति करने के बाद किसी की जरूरत नहीं है, और ये तो सामान्य आम आदमी, वो भी इस्कॉन का आदमी, तो बाहर क्या लोगों का क्या हालत होगा? उनको तो कृष्ण के ऊपर इतना भरोसा नहीं कि वो भगवान है करके। और वैसा ही हाल साधुओं का है सभी, उनको भी पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, इसकी चर्चा करेंगे हम। और आगे कहते भगवान कि कौन साधु है? यथा आत्मना। यथा आत्मना मतलब वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, हमेशा आत्म साक्षात्कार के कार्य में हमेशा मग्न रहता है, वो हमेशा भगवान की सेवा करता रहता है, ध्यान करेगा, प्रचार करेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण लिखा है सर्वभूत हिते रथा, अर्थात वो लोगों का कल्याण करने के कार्य में व्यस्त रहता है, लोगों का कल्याण करने के कार्य में हमेशा व्यस्त रहता है वो कल्याण के लिए। तो इस तरह से भगवान जो साधु है, ऋषि है, उसके लक्षण बताते, गुण बताते। तो अभी इसके कुछ मैं आपको इस दुनिया में, अभी इस जमाने में किस तरह से हमने देखा है, जब हम बस पार्टी में गए तो कैसे कैसे साधु देखे, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ दो तीन, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो एक दिन ये फुलमरी नाम का तालुका आता है इधर औरंगाबाद में, उधर गए थे हम, पूरा दुष्काल, बारिश ही गिरता नहीं उधर, और धूप में गए थे हम उधर। तो दोपहर का टाइम था, हमको कुकिंग करना था, तो लोगों ने बताया उधर आश्रम में जाओ, उधर बड़ा टंकी है। तो उधर गए हम, तो बड़ा टंकी दिखा, बहुत बड़ा टंकी था, लोग आ रहे थे पानी भरने के लिए। तो टेंशन गया ने, तो बहुत बड़ा टेंशन था, क्या करना है अभी। तो उधर उमा शंकर शिव जी का मंदिर था, वो मंदिर में रुके हम, कुकिंग किया, प्रसाद लिया। उधर सात आठ साधु थे। तो मेरा प्रसाद होने के बाद मेरा माला बचा था, इसलिए मैं उनके आश्रम के सामने जप कर रहा था। तो मैंने देखा क्या कर रहे हैं लोग दोपहर को कुछ है नहीं। सुबह तो जब हम गए थे 11 बजे तो बहुत सारे लोग उनको मिलने आ रहे थे, कार लेके आ रहे थे, घर से आ रहे थे, पूरे कुटुंब के साथ आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, बात करके जा रहे थे। तो दोपहर को मैंने देखा क्या कर रहे हैं लोग, तो सारे मिलके टीवी देख रहे थे आश्रम में, सारे के सारे टीवी लगाया, टीवी देख रहे सब लोग। तो मैंने सर को हाथ लगाया, अरे क्या कर रहे हैं लोग, अब ये खुद टीवी देखेंगे तो लोगों को कैसे मना करेंगे टीवी देखना। देखो टीवी देखना अभी एक तरह से पाप है टीवी देखना, क्योंकि शरीर कृष्ण भक्ति के लिए मिला है, एक में उद्देश्य। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ किस तरह से लोग टीवी देख के अनजाने में पाप कर देते, अपना धर्म नष्ट कर देते। जैसे समझो पति पत्नी टीवी देख रहे, परिवार के साथ टीवी देख रहे, और कोई हीरो रहेगा, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कोई हीरो रहेगा एकदम जो अभी जिसका चल रहा है सब, तो फॉर्म चल रहा है जिसका फॉर्म, तो वो हीरो रहेगा, तो स्त्री क्या कहेगी, कितना सुंदर है ना, कितना अच्छा गाता है, कितना ज्यादा नाचता है, कितना अच्छा फाइटिंग करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये क्या होगा, अपने पति के सामने उसकी स्तुति कर रही हो, है ना, तो ये पर पुरुष की स्तुति कर रही हो, अनजाने में वो पति पता धर्म के उसके खिलाफ है, वो पाप है ना ये उसके लिए, खुल्लम खुल्ला व्यभिचार। तो इस तरह से, और पति भी खुश, पति को भी पता नहीं चल रहा, अरे ये इसके धर्म के खिलाफ है। इस तरह से अनजाने में अनेक पाप करते हम टीवी देख के। तो ये साधुओं को पता नहीं, खुद टीवी नहीं देखना चाहिए, ये सब मिलके टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह से किस तरह से ये लोग लोगों को पाप करने से बचा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं तंग आ गए लोग, ये लोग कुछ मार्ग नहीं दिखा रहे, इसलिए लोग तंग आ गए पूरी दुनिया में। और टीवी देखने से क्या है, एक तरह से पाप भी होता है। और साधु को यतात्मना कहा है, तो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। मतलब इनको कुछ काम धंधा नहीं है, टीवी देख रहे तो है ना, उनको पता नहीं है, दुर्दैव से प्रभुपाद से मिले नहीं, वो दिन भर उनको सेवा नहीं है कुछ है ना, हमको टाइम नहीं पुरता है, दिन कम पुरते, साल कम पड़ते, जीवन कम पड़ेगा कुछ दिन बाद, अरे एक ही जीवन मिल गया। इस तरह से जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, दिन पुरते नहीं, अरे किधर गया दिन, पूरा गया दिन, इस तरह से। तो इस तरह से और एक जगह गए थे हम, वो गांव का याद नहीं, एम से नाम है, वो याद ही नहीं आ रहा, सुबह से याद कर रहा हूं मैं, लेकिन आप सुनो। एक गांव में गए थे तो शिवजी का मंदिर था, पूरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम गए उधर सुंदर विश्वम्भरपुर गए पूछने के लिए, इधर रह सकते क्या, धूप के दिन थे तो मंदिर का जरूरत नहीं था, दो पेड़ थे बाजू में, पूरा वो एक कट्टा था उसके ऊपर हमने बेड लगा दिया, उधर रुक गए हम। रुकने के बाद वो साधु बोला आपको इधर रहना है, उधर पानी है, टंकी है, रहो इधर आप। इस तरह से हमारे जैसे कपड़े पहने थे उसने, सैफरन कपड़े पहने थे। तो सुबह मैं उठा 3 बजे नहा के अपना जप कर रहा था, तो ये 5 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया, अपना टॉयलेट का बकेट लिया, खीसे से बीड़ी निकाल दिया, गया टॉयलेट को, बीड़ी फूकते हुए सैफरन, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जय गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की। तो बीड़ी फूक रहा है, सैफरन पहना है, गांव का मंदिर है, मंदिर में सैफरन पहन के बैठा और बीड़ी फूक रहा है। अरे मुझे शौक लग गया यार, बीड़ी फूक रहा है। तो बाद में गांव वाले उनमें बैठ के भी बीड़ी फूक रहा था वो। अरे मैं सोच रहा था कैसा साधु है ये, क्या मार्गदर्शन करता है। अभी बीड़ी फूकना पाप है, हमारे चार नियम है ना, उसमें व्यसन है, उसमें आता है ना, सिगरेट फूकना व्यसन है, पाप है। तो वो साधु है उसको पता नहीं बीड़ी फूकना पाप है, तो लोगों को क्या सिखाएगा ये। और एक जगह गए हम वाकुलनी करके गांव है, उधर बहुत बड़ा वारकरियों का ट्रेनिंग सेक्शन है, बहुत बड़ा, यानी मैंने सुना है उधर सबसे बड़ा वारकरियों का ट्रेनिंग है। उधर जाने के बाद बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो खेत में मंदिर था शिव जी का नीलकंठेश्वर, तो उधर एक योगी रहता था, वो योगी गया बाद में मर गया, अच्छा था आदमी वो, लेकिन उसने डेवलप करके रखा था मंदिर, पूरी तरह से आश्रम बांध के रखा था। तो वो कौन संभालेगा, गांव वाले सोच रहे थे इसको कौन देखेगा, खेत में था वो, गांव से बाहर था, तो उन्होंने एक साधु को पकड़ के लाया उसको संभालने के लिए। तो उधर 2 दिन रहे हम, हर रोज दोपहर को आते थे 2 दिन, तो एक दिन पूरे उधर रहे हम एक दिन, तो वो साधु हमारे साथ देख रहा था मैं, अच्छी तरह से रह रहा है, बाद में दूसरे दिन भी अच्छी तरह से रहेगा। और बाद में शाम को जब हम जा रहे थे तो मैंने देखा वो क्या कर रहा था, अपने रूम में बैठ के सिगरेट फूंक रहा था वो। तो अभी देखो इस तरह से ये साधु है, तो किस तरह से ये क्षीण कलमशा कैसे बोल सकते हैं, इनको खुद पता नहीं कि पाप क्या है। तो इस तरह से और एक जगह हम गए थे, तो ये बीड़ जिले में, बीड़ में गए थे, उधर एक ये इधर एक पहाड़ है, उधर एक पहाड़ है, एक पहाड़ पे एक बाबा बैठा है, दूसरे पहाड़ पे दूसरा बाबा बैठा है, और नीचे हर मंदिर में और अलग अलग तरह के बाबा बैठे हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग भगवान को जो काकड़ा गाते हैं सुबह भगवान को उठाने के लिए, उठी उठी गोपा लगाते हैं, वो एक साधु के लिए गाते हैं वो लोग। वो भगवान को हटाया मंदिर से, उधर वो साधु को लगा दिया है, और सुबह आके उसके लिए काकड़ा गाते हैं लोग। तो इस तरह से पूरी तरह से लोग भ्रमित है, और वो साधु भी एक्सेप्ट करता है इस तरह से, लोग उनको भगवान समझते हैं इस तरह से। ये लोग खुद और क्या करेंगे, देखो आगे करेंगे, वो सर्वभूते ही तरह में आएगा। तो ये हर एक गांव में वो बाबा का मंदिर है, वो पहाड़ के ऊपर आप जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भीड़ के है उनको पता है कौन बाबा बैठा है उधर, हाँ तो सबको पता है, वो बहुत फेमस है वो, और लोगों ने विट्ठल रुक्मिणी को निकाल दिया है और उनका मंदिर बांध के रख दिया है उधर। तो इस तरह से अलग अलग जगह जो साधु है वो लोगों को सिखा नहीं रहे कि पाप क्या है और आपको क्या करना है, उनको खुद को पता नहीं। इस तरह से नेवासा करके गांव है, नेवासा गांव आपको पता रहेगा, अहमदनगर के आगे है, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। तो उस सिटी में हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद पूछा कि अब इधर कोई तो रहने का जगह है क्या, छाव है क्या, हमको प्रसाद लेना है। तो उन्होंने पता बोला कि नदी है, नदी के पार शिव जी का मंदिर है, उधर आपको मिलेगा। तो उधर गए गाड़ी लेके, हम गाड़ी लेने के बाद सबने अभी सब थके हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बस पार्टी जाते हैं उनको पता है, चटाई डाल के सो गए। अभी मेरा हर दिन जप रहता है, मैं दोपहर को जप कर रहा था, तो उधर एक कोने में साधु बैठा था, आश्रम था बड़ा, बहुत बड़ा पीछे उनका। तो साधु बैठा था, वो क्या कर रहा था, चिलिम फूक रहा था, ऐसा बड़ा बड़ा धुआं निकल रहा था, और सबके सामने, डर नहीं लग रहा है, सबके सामने फूक रहा है, ऐसा गोल गोल धुआं छोड़ रहा था। अरे बाप रे, बाद में गांव वाले आ गए दो तीन, एक बजा ना तो उनका खाने का छुट्टी होता है दोपहर को, तो टिफिन लेके आ गए लोग, टिफिन लेके आ गए तो उनके बाजू में बैठ गए, तो उसको भी चिलिम थमा दिया, तो वो भी चालू हो गया उधर। इस तरह से और एक साधु आ गया दोपहर को, वो भी सेफ्रॉन पे था, वो भी आके ज्वाइंट हो गया, वो भी चिलिम फूकने लगा उधर। बाद में और एक आया बूढ़ा व्यक्ति, वो नहीं गया उधर, वो लेके गए हमारे एक भक्त, बोला ये सब जगह हमारा है और ये पूरा ये मंदिर का जगह है, कुछ दिन बाद इधर हम बड़ा स्कूल खोलने वाले हैं, बड़ा हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, और क्या कर रहा है चिलिम फूक रहा है, उसके कौन कोई भी रहेंगे सहकार अंदर चिलिम फूक रहे, वो कैसे कैसे लोगों को अच्छा ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह से अभी कुछ दिन पहले गोविंद प्रभु ने लेक्चर दिया था इधर, तो उन्होंने बताया था दलाई लामा के बारे में बताया था, उनको एक बीटल्स ने लेटर लिखा था कि कृपा करके आप मांस मत खाओ क्योंकि आप अहिंसा के प्रतिनिधि इस इधर, तो मांस नहीं खाना चाहिए। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि उनके वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वो जब आश्रम में रहते मांस नहीं खाते, लेकिन जब ट्रैवलिंग करते मांस खाते हो। तो इस तरह से मांस खाना पाप है, सबसे बड़ा पाप है। तो इस तरह से कितने साधु देखेंगे हम, कितने लोगों के बारे में बताऊं मैं आपको। एक साधु है, ये तीन हो गया अभी तक, एक छिन्न द्वैधा का उदाहरण बताता हूं मैं आपको, किस तरह से लोगों को पता नहीं कौन भगवान है। अभी नासिक में गए थे पिछले साल हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बस पार्टी खत्म हो गई हमारी, और एक जगह दोपहर को प्रसाद लेने के लिए रुक गए, तो दो कावकरी आ गए उधर। कावकरी आने के बाद अभी वो थोड़े भक्ति मार्ग में है इसलिए आए, बोले साधु आया तो तुरंत आते कावकरी लोग। आने के बाद पूछो कहाँ से आए आप, क्या है। बाद में उन्होंने बोला हमारा भी इधर आश्रम है छोटा सा, हमारा उधर पूजा चलता है, हमारे बाबा जी महाराज है, 55 तालुका में उनके मठ है, कितने 55 तालुके में उनके मठ है, और एक बड़ा हेडक्वार्टर है उनका, हजारों एकड़ जमीन है। तो मैंने पूछा क्या करते उधर, तो सबको एक साल में एक बार इकट्ठा बुलाते, बहुत बड़ा यज्ञ करते, लाखों लोगों को प्रसाद बांटते, लेकिन करते क्या है आप लोग, पर्सनल क्या है, कुछ नहीं है। और साधु क्या करते आपके, बोले वो एक बार यज्ञ करने के बाद ऐसा ध्यान लगाते 3-4 घंटे तक गायब, आती ही नहीं है बाद में होश में, तो ऐसा ध्यान लगाते। अभी किसके ऊपर ध्यान लगाते पता नहीं है, उनको बोला किसका ध्यान पता नहीं, किसका यज्ञ पता नहीं। इस तरह से अभी 55 तालुके में उनका प्रचार है, मतलब कितने लोग फॉलो, वो फेमस है, उनका नाम मैं नहीं बता सकता लेकिन बहुत फेमस है वो। तो इतना सारा प्रचार करने के बाद भी उनको पता नहीं भगवान कौन है और किसका ध्यान कर रहे। इस तरह से भगवान जो बता रहे हैं, जो साधु है क्षीण कलमशा होना चाहिए, मतलब पाप नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि छिन्न, उसको पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण केवल एक ही भगवान है, बाकी सारे देवी देवता जो है उनके सेवक है वो, उनका भक्ति करके क्या मिलने वाला, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त भी नहीं करने वाले वो, और भक्ति उनका होता ही नहीं, उनका उपासना होता है, कृष्ण का भक्ति होता है, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं है। और यतात्मना, हमेशा वो खुद भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और लास्ट में सूर्य भूत हिते रथा, मतलब लोगों के कल्याण के कार्य में वो हमेशा लगा रहता है हमेशा। तो अब ये लोग क्या कल्याण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोलेंगे, उससे भी ज्यादा स्कूल खोलेंगे, बस इधर तक इनका सर्वभूत हिते रथा खत्म हो जाता है। और बहुत पैसा है तो जाके क्या करेंगे, अन्नदान करेंगे, अन्न छत्र खोलेंगे, तो इसके ऊपर इनका खुद का भी पालन पोषण होता है और उनको भरभराहट भी हो जाता है, अलग जगह बहुत सारे मठ दान सब आ जाता है। लेकिन ये सर्वभूत हिते रथा नहीं है, ये अन्नदान करके और हॉस्पिटल बांध के स्कूल खोल के, अभी हॉस्पिटल खोला तो लोग बीमार पड़ना बंद नहीं होने वाले, स्कूल खोलने के बाद लोगों का आत्मज्ञान दूर नहीं होने वाला, क्योंकि आप उधर भगवत गीता भागवत पढ़ाते ही नहीं है, सब ये भौतिक शिक्षण देते आप, तो कहाँ से दुख दूर होने वाला है। अन्नदान भी देते हैं तो कांदा लहसुन के साथ, है ना, पूरा फोड़ फोड़ के अलग अलग सर्व किया जाता है, तो इस तरह से वो पापी है। तो खाने वाला कम पापी है, खिला के और पापी कर दे उसको, इस तरह से दुर्दैव से उनको पता नहीं है कि लोगों का कल्याण क्या है, लोगों का कल्याण क्या है, क्या असली कल्याण है कि हम उसको लोगों का कल्याण कर सकते। तो इस तरह से लोग पूरी तरह से भ्रमित है, साधु भ्रमित है। इसलिए प्रभुपाद इधर बोल रहे हैं कि बाबा ये दुनिया के जो लोग हैं ये तंग आ गए, दुनिया के लोग। प्रभुपाद ने बोला है धार्मिक स्वामी योगी, अभी एक योगी अहमदनगर में बैठा है हमारे मंदिर के बाजू में, मंदिर बांध के कुछ नहीं करता है, लोगों को योगा सिखाता है बस, वो तो कभी आता नहीं है, उसका दर्शन करने के लिए 1,00,000 रुपया लगता है, 1,00,000 रुपया दर्शन करने के लिए। हम फोकट देना चाहते नहीं आते, इधर प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद बैठे, प्रभुपाद को लेके घूमते हम, लेकिन कोई आता नहीं है, और प्रभुपाद के आसपास भी नहीं वो लोग, मच्छर भी नहीं उनके सामने। तो इस तरह से उनको 1,00,000 रुपया देते लोग, और क्या सिखाएंगे। बाजू में मंदिर है हमारा, एक गली छोड़ के मंदिर है, सुबह से मंगल आरती चलता है, नरसिंह आरती चलता है, तुलसी आरती चलता है, जपा चलता है, लेक्चर होता है, कीर्तन होता है, फेस्टिवल होते हैं, ये शुकशुकाहट, इधर कुछ नहीं, क्या पर पता नहीं, आवाज भी आता नहीं किधर से कुछ। तो इस तरह से लोगों को फर्क नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह से योगी लोग वो परेशान है, वो लोग उनको समझ में आता है, ऐसा सीधा सीधा समझ में आता है। और ये लोग इतना नाच रहे, हर महीने में एक बोर्ड लगा रहता है ये फेस्टिवल है, वो निकल गया दूसरा बोर्ड लगता है ये फेस्टिवल, तीसरा बोर्ड लगता है ये फेस्टिवल है, और ये तो इधर शुकशुकाहट कुछ है ही नहीं। तो लोग समझ में आता है लेकिन छोड़ के जाएंगे कैसे, अहंकार है ना लोगों का, खुद का भी एक अहंकार रहता है, अरे हम इधर है, कितना बड़ा मंदिर बांधा है, मंदिर बांध के क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं आपके पास। तो इस तरह से सब योगी स्वामी कर्मी ज्ञानी सब लोग अपना अपना क्या अपना अपना एक मठ बांध के बैठे हैं झोपड़ी पे। एक तो एक गांव में गए थे हम रह रहे थे उधर, वो आदमी कितने साल से यज्ञ कर रहा था, केवल उधर केवल यज्ञ कर रहा था, तो पहली बार उसने फर्स्ट कैंटो देखा तो पागल हो गया वो, हमारे पीछे ही लगा, मेरे पास केवल 100 रुपया है, दे दो मुझे। अभी सुंदरेश्वर प्रभु बोलेंगे देंगे हम इसको, थोड़ा सुबह तक रुकेंगे क्या करता है देखेंगे। तो इस तरह से केवल यज्ञ कर रहा था लेकिन पता नहीं किसका यज्ञ कर रहा है, क्यों यज्ञ कर रहा है, इस तरह से खुद भ्रमित है ये लोग। तो लोगों को क्या आश्रय देंगे, क्या दिलासा देंगे लोगों को, कुछ नहीं दे सकते। तो इस तरह से प्रभुपाद बोल रहे हैं जो भक्ति करता है ना वो संरक्षण करता है आम आदमी का। ये पागल लोग बैठे सब जगह, इनको खुद को पता नहीं खुद का कल्याण किधर है, तो ये क्या संरक्षण करने वाले। लेकिन इस्कॉन का जो भी प्रामाणिक संस्था है जो प्रचार कर रही है संप्रदाय में, उसका एक सामान्य भक्त भी उनको संरक्षण प्रदान करेगा। उसको अगर सवाल पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, तो बोलेगा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भगवान है ना, हम कृष्ण के दास है, हम प्रसाद खाते हैं, ये सब बताएगा वो, एकदम आसानी से बताएगा। उसके लिए इतना बड़ा कुछ ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही इस्कॉन में घूमते घूमते आ गए, पढ़ाई नहीं किया कभी, कभी लेक्चर भी नहीं अटेंड किया कुछ भी, तो भी ऐसे ही पता हो जाता है कृष्ण भगवान है, हम उनके दास है, प्रसाद खाना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, ये तो कोई भी बता सकता है, ये किसी को भी पता नहीं है, साधु होके भी पता नहीं उनको। इस तरह से ये संरक्षण है, ये संरक्षण कर रहा है हमारा, अभी हमको पता नहीं है लेकिन हम संरक्षण कर रहे हैं। और प्रचार करेंगे तो और बड़ा संरक्षण करेंगे, प्रचार करेंगे तो और बड़ा संरक्षण करेंगे। जैसे प्रभुपाद ने मनु से चालू किया है, मनु से चालू किया है कि किस तरह से एक मनु से दूसरे मनु को क्या होता है, ये कृष्ण भावना का ज्ञान प्रदान किया जाता है और उसका आगे वो प्रचार करता है, बाद में राजाओं को दिया जाता है। बाद में प्रभुपाद ने बोला जय कि हालांकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के जो शिष्य है वो झगड़ा करके अलग अलग मठ लेके बैठे, फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ा रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, रुका नहीं है प्रचार। इस तरह से प्रभुपाद ने बोला मेरे बारे में आप पूछेंगे तो मैंने तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना की है। इस तरह से उन्होंने बताया ऑलरेडी मैंने स्थापना की है, हजारों अमेरिकी आ रहे हैं, यूरोपियन आ रहे हैं इसमें, उसके आगे हम बताएंगे उनके शिष्य के बारे में है कि नहीं, जिनको हमको पता है, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, 14 मंदिर एक ही शहर में बांध दिए है कि नहीं। आदमी किधर जाएगा, जिधर जाएगा इस्कॉन वाले दिखेंगे। 14 मंदिर मतलब क्या होता है? और दिल्ली है कितना, महाराष्ट्र इतना बड़ा है, दिल्ली इतना सा है, उसमें 14 मंदिर, और कितना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते वो लोग, इतना प्रचार किया है प्रभु। और महाराज इतना क्या, कल लोकानाय ठाकुर प्रभु का लेक्चर सुना था मैं उधर ब्रह्मचारी क्लास, तो महाराज को एडमिट किया था, और एडमिट करने के बाद महाराज बोले कि मैं कभी बाहर सोया नहीं मंदिर से, तो मुझे यहाँ से लेके चलो। तो उनके शिष्य बोले नहीं नहीं महाराज कैसे लेके जाएंगे, नहीं नहीं मैं कभी भी बाहर सोया नहीं हूँ, मुझे मंदिर में लेके चलो। तो क्या किया शिष्यों ने, सब एक बाजू में बेड़ था उसके ऊपर गद्दी डाल दिया, चादर ढीला, भगा के लेके गए महाराज को। और भगा के लेके गए, दूसरे दिन सब उठ गए तो महाराज आल्टर में थे, ऑपरेशन हुआ था कुछ महाराज। तो इस तरह से किस तरह से प्रचार कर रहे ये लोग, रुके नहीं है। इतना मुझे बुखार आया था तो कैसा हाल हो जाता है, कृष्ण याद नहीं आते कृष्ण। ये लोग कितना प्रचार कर रहे है, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह से सब देख सकते हैं हम, गोपाल कृष्ण महाराज है, जय पताका स्वामी महाराज है, राधानंद महाराज है, कैसे प्रचार कर रहे हैं सब लोग, कितना प्रचार किया सबको पता है, बताने का जरूरत नहीं। एक बार बताऊंगा मैं केवल इनके बारे में, लोकनाथ महाराज ने जो पद यात्रा चालू किया है, तो मैं कल 20-25 वीडियो देखे पद यात्रा के, क्या करता है पद यात्रा जाके। तो उन्होंने अभी तक देखो 1984 में पद यात्रा चालू हुआ है द्वारका से, 35 साल हो गए उनको। तो अभी तक 1,60,000 किलोमीटर गई है पद यात्रा, 1,60,000 किलोमीटर चले है, और 6 बार भारत का प्रदक्षिणा किया उन्होंने। कितनी बार? 6 बार भारत का प्रदक्षिणा किया है। तो जब गांव में जाते हैं ना वो, तो ऐसा भयानक स्वागत होता है उनका। अगर आपने, मेरे पास वीडियो वगैरह है नहीं उसका, वो उधर ही कुंज विहार में, आपको चाहिए तो कौन दे सका पर उसे ले लो आप। तो ऐसा स्वागत करते हैं लोग, पागल हो गए उनके लिए लोग, जब जाता है ना रथ तो ऐसे पागल हो गए लोग उनका स्वागत करने के लिए। पूरा गुरुकुल के गुरुकुल बाहर आ गए रास्ते पे, और ऐसे नाच रहे थे देखने के लिए। पूरा ऐसा वो कैमरा जिसने मारा है, पूरा ग्राउंड भरा था विद्यार्थियों से साउथ इंडिया में। और मिलिट्री में जब गए तो मिलिट्री के वो क्या रहता है उनका टेंट एरिया रहता है ना, सब मिलिट्री वाले बंदूक लेके नाच रहे कीर्तन में, पूरे सब नाच रहे थे वो। तो ऐसा स्वागत होता है उनको। तो ये क्या है, उधर जाके शाम को लेक्चर देते, प्रसाद बांटते, वो कीर्तन करते सबको लेके, हर गांव में पहुंचते। अभी 1,60,000 अभी बता रहे, तो केरल में 5 महीना रहे। तो मुस्लिम लोगों ने भी कृष्णा भगवद गीता और फर्स्ट कैंटो का ऐसा 500 रुपए का सेट बनाया था, तो ऐसे सेट बेचे उन्होंने। 5 महीने में 45,000 महाभीख बुक बेचा है उन्होंने, 45,000 केरल में केवल। और जब सब क्रिश्चियन बने ना, है तो हिंदू वो लोग, क्रिश्चियन बने लेकिन सब लोग ले रहे थे। वो बोल रहे थे मस्जिद में भी लोगों ने लिया है, क्रिश्चियन लोगों ने भी लिया है, सब लोगों ने लिया। जिस गांव में रुके थे वो गांव में है, उन्होंने गो हत्या हो रहा था ना, तो उन्होंने गाय के ऊपर लेक्चर दिया, तो वो जो मुखिया सरपंच है ना, उसने उधर कसम खाया कि मेरे गांव में मैं कभी इसके आगे गो हत्या होने नहीं दूंगा। ये हरिनाम संकीर्तन का प्रभाव है, गौर नेता भी है उनके साथ। तो इस तरह से ऐसा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं वो लोग, हमको पता नहीं, इधर रह रहे ना हम, हमको पता नहीं। और ऐसे ऐसे साक्षात्कार बता रहे थे वो, अभी महाराष्ट्र पद यात्रा चालू हो गया दिंडी के तुरंत बाद, वही रथ लेके गए तो दामोदर लीला प्रभु मुझे बता रहे थे। वो बोले भगवान ऐसा ख्याल रखते हैं ना हमारा, ऐसा कि 1 मिनट भी हमको तकलीफ नहीं होता है। एक दिन सिलेंडर खत्म हो गया था, ब्रेकफास्ट बनाना था, कुछ नहीं सिलेंडर, अभी गांव में कहां से सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर मिलेगा। तो वो आचार्य प्रभु बोले आप पोहा बनाओ थोड़ा। तो काट दिया सब मिर्ची वगैरह और गैस ऑन किया, गैस खत्म। अभी आगे चलना है 10-12 किलोमीटर। तो तुरंत वो दोनों बात कर रहे थे, एक गांव वाला आ गया, बोला क्या आपको क्या तकलीफ है क्या? हाँ बोले सिलेंडर खत्म हो गया हमारा, किधर मिलेगा? अरे नहीं मिलने का क्या, मेरे घर में आप लेके जाओ, और ला के दिया तुरंत 1 सेकंड में। तो इस तरह से भगवान भी उनका ख्याल रखते हैं, इस तरह से ये प्रचार चल रहा है। और आगे जाके अभी राधेश्याम प्रभु ने भी इतना प्रचार किया है, उनके हृदय में तो ज्वालामुखी बैठा है ना, पूरा ज्वालामुखी बैठा है, अब फट रहा है धाड़ धाड़, अलग अलग जाके आके फट रहा है। तो वो बताने का जरूरत नहीं, हम उसके साक्षीदार है हम सब लोग, और रोक नहीं सकता उसको कोई, कितना भी आंधी आने दो तूफान आने दो, रुकने वाला नहीं वो तूफान। तो इस तरह से तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, प्रभुपाद बताते हमको क्या करना है। ये चैतन्य चरितामृत का माधवेंद्र प्रभु की कथा है, उसमें एक 4.79 नंबर का श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया है, बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने कि उसमें हमको क्या करना है। प्रचार चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन हमको क्या करना है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, माधवेंद्रपुर ने कुछ एडवर्टाइज नहीं किया, इतना बड़ा फेस्टिवल कर दिया। अभी मैंने भी पांच साल पूर्व ये इस्कॉन की स्थापना की थी, इतना अग्नि के जैसे भड़क गया, इतना बढ़ रहा है ये लोगों आवक को, क्या बोले, आश्चर्य हो रहा है लोगों को, इतना कैसे बढ़ रहा है। लेकिन हमको पता है ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। जो क्योंकि वो क्या है, 5 महीना क्यों लगेंगे कृष्ण को, 5 दिन में सब प्रचार कर सकते हैं कृष्ण, है ना। तो ये कृष्ण की कृपा है। तो प्रभुपाद आगे श्लोक कोट करते, यत्र योगेश्वर कृष्ण, श्लोक कोट करते और लास्ट में बोलते हैं कि किस तरह से हमको क्या करना है। प्रभुपाद बोल रहे यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारक कृष्ण के निष्ठावान भक्त बनेंगे तो कृष्ण सदैव उनके साथ रहेंगे। जैसा, क्योंकि कृष्ण आपके भक्तों के ऊपर सदैव दयालु रहते हैं। और आगे बोल रहे, जैसा कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर युद्ध को जीत लिया था, ऐसा ही आंदोलन यशस्वी होने वाला है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को मदद किया ना युद्ध जीतने के लिए, वैसे ही ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन यशस्वी होने वाला है, उसमें डाउट नहीं है। लेकिन यदि, बोल रहे ब्रो, यदि आगे क्या क्या करेंगे हम अगर भगवान के निष्ठावान भक्त बनेंगे और पूर्ववर्ती आचार्यों के आज्ञाओं का पालन करते हुए शिक्षा के अनुसार उनके प्रचार करेंगे, जैसा नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। तो पहला बताया है प्रभुपाद ने, आप निष्ठावान भक्त बनो। दूसरा बोला है पूर्ववर्ती आचारों को क्या है, शिक्षा के अनुसार प्रचार करो। तीसरा कहते भक्त को एक ही आकांक्षा रहनी चाहिए, एक ही, हमेशा भक्तों की संगम में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। और आगे लिखते हैं इस्कॉन के बाहर नहीं जाने का, ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने, पढ़ता हूं मैं, वे कृष्ण भावनामृत संघ के आंदोलन के बाहर नहीं जा सकते, ऐसा लिखा है प्रभुपाद ने। इस तरह से तीन बात हो गई है कि निष्ठावान बनो, आचार्यों को, पूर्ववर्ती आचार्यों के शिक्षा के अनुसार प्रचार करो, और आकांक्षा करो कृष्ण भक्तों की, इसकी संघ की, इस्कॉन के बाहर मत जाओ। और लास्ट में बताते हैं कि प्रचार कैसा होगा इसका तर्क मत लगाओ, प्रचार कैसा होगा इसका खुद के बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से अनुमान मत लगाओ, प्रचार होने वाला। ये तीन चीज आप करेंगे ना तो प्रचार होने वाला है, क्योंकि प्रचार आप नहीं कर रहे, प्रचार कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण की कृपा से प्रचार होगा। आप केवल ये तीन चीज करो। तो मुझे यही कहना है और मुझे भी समझना है कि सब लोगों ने अपना अपना रोल किया है ना, हमारे वरिष्ठ भक्तों ने भी किया है। तो हमको क्या करना है, निष्ठावान बनना है और सदैव भक्तों के संग में रहना है, इस्कॉन के बाहर नहीं जाना है, पूर्ववर्ती आचार्यों के जो मार्गदर्शन किया है उसी में रह के इस्कॉन का प्रचार करना है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक प्रचार हो जाएगा, क्योंकि प्रचार भगवान करते उनकी कृपा से प्रचार होता है, इसमें कोई आकांक्षा नहीं है सब कृपा से। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। निताय बोर प्रेमानंदे।